महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्षायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं, महाद्रवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें चौथी पुस्तक में तीसरा अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है, और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 50 पर, 50। कल हमने 5 ये अंतर की प्ररूपणा चल रही है, और उसमें भी उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर देख रहे हैं। उसमें 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी आदि की बात हमने पढ़ी थी। अब उसी का विशेषार्थ पढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 50 पर। अभी बात क्या है, उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने के बाद अनुत्कृष्ट करके वापस उत्कृष्ट करे तो बीच में कितना अंतर जा सकता है, इसकी बात है यहाँ पर। तो 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी जीवों में 4 घाती कर्म और आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के योग्य परिणाम एक समय और अंतर्मुहूर्त के बाद होते हैं, यानी एक समय से लेकर अंतर्मुहूर्त के बाद हो सकते हैं। यानी अंतर कितना होता है, कम से कम एक समय, अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त। इसलिए इनमें उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त का है। इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर काल स्पष्ट ही है, क्योंकि उत्कृष्ट कितने काल तक होता है, एक या दो समय तक, इसलिए उतना ही अंतर होता है। औदारिक कायोगी जीवों में आयु कर्म के सिवा यह अंतर काल इसी प्रकार प्राप्त होता है, क्योंकि ये तो अंतर्मुहूर्त वाले है ना, योग मनोयोग वचन योग तो अंतर्मुहूर्त के है। संगी पंचेन्द्रियों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है, इसलिए औदारिक काय योग वाले संगी पंचेन्द्रियों में भी यही घटित होगा, परंतु औदारिक काय योगी में अन्य भी जीव है, लंबे काल तक औदारिक काय योग ही रहे तो पृथ्वी का एक में होता है कुछ कम 22,000 वर्ष। तो कहते औदारिक कायोग का उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है, इसलिए इसमें आयु कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर साधिक 7,000 वर्ष का है, क्योंकि पहला अपकर्ष आएगा 2/3 बीत जाने पर, 22,000 वर्ष का 2/3 चला गया यानी साधिक 7,000, और फिर लास्ट में एक जाके फिर अंतर्मुहूर्त पहले आयु का बंध किया। कायोगी जीवों में, जब कायोग कहेंगे तो उसके भेदों को गौण करके मात्र कायोग को लेना है, 4 घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध एक समय के बाद इसलिए बन जाता है। अन्य कायोगों में ऐसे परिणाम एक समय के बाद हो सकते हैं, अतः इनमें 4 घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। इनमें वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर का उपशम श्रेणी की अपेक्षा अंतर्मूर्त कहा है, वहां बंध ही नहीं है उस अपेक्षा अंतर्मूर्त बताया, शेष कथन सुगम है। कल हम किस बात पर कायोगी में उत्कृष्ट का अनंत काल नहीं होगा क्योंकि उत्कृष्ट का कौन करेगा तो संघ पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव करेगा और उसका उत्कृष्ट करके तो आप कहेंगे उत्कृष्ट करके कायोग में ही मरकर अन्यत्र वो चला जाएगा परंतु वो अंदर यहाँ घटित नहीं होता है क्योंकि भले पंचेंद्रियों में आएगा फिर भी सभी पर्याप्तियों से पूर्ण होते होते अन्य भी योग होते हैं उसके इसलिए उसी भाव में लेना था तो अंतर्मूर्त घटित हुआ था इस पर हमने कल चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं औदारिक मिश्र का योग। औदारिक मिश्र का योगी जीव में सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है क्योंकि वो तो जिस पर्याप्ति से पूर्ण होगा उसके पहले की बात है तभी उत्कृष्ट होता है तो फिर अनुत्कृष्ट का अंतर होने का सवाल नहीं है ना उत्कृष्ट का अंतर होगा। आयु कर्म का भंग ये समझ में आती है बात उत्कृष्ट का स्वामी कौन है देख लो तो जरा क्लैरिटी हो जाएगी। काल भी हमने उसका एक समय देखा था स्वामित्व है 18 के आसपास होगा ये मार्गणा कौन सी चल रही है औदारिक मिश्र 20 पे हाँ 20 पर उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है जगह नहीं होगा वहां पर औदारिक मिश्र 11 पेज पर है देखो यहाँ क्या लिखा है औदारिक मिश्र का योगी जीवन में मिला क्या आपको 24 नंबर का पॉइंट 11 नंबर के पेज पर चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभव बंध का स्वामी कौन है संगी मिथ्यादृष्टि तिर्यंचिया मनुष्य साकार जागृत और नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेंद्रिय जीव चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है और वेदिनी नाम और गोत्र का सम्यक दृष्टि सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित। अब यहाँ तो उसका अंतिम समय नहीं लिखा परंतु काल में वो बात घटित होगी औदारिक मिश्र वाले 30 नंबर के पेज पर विशेषार्थ में लिखा वहां लिखा है विशेषार्थ मिला 30 पृष्ठ पर विशेषार्थ ऊपर का विशेषार्थ औदारिक मिश्र कायोगी जीवों में पर्याप्त होने के एक समय पूर्व उत्कृष्ट अनुभाग बंध संभव है अतः इनमें सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यानी वो भले वेदिनी नाम गोत्र हो या चार घाती हो उत्कृष्ट वहीं पर संभव है। अब आते अपने पेज पर हाँ उत्कृष्ट की बात है ना अब ये अपने 50 पेज पर आना इसलिए अंतरकाल नहीं है बताए आयु कर्म का भंग अपर्याप्तकों के समान है क्योंकि औदारिक मिश्र अवस्था में आयु कौन मानेगा मनुष्य तिर्यंचों के होते हैं परंतु समय दृष्टि तो नहीं बांधेगा क्योंकि वो तो पर्याप्त होने वाला है यानी लब्धि अपर्याप्त ये पर्याप्तकों के सभी के हो गए केंद्रीय आदि सबके औदारिक मिश्र तो सबके उपाया जाएगा परंतु आयु का बंध लब्धि अपर्याप्तकों के होगा इसलिए अपर्याप्तकों के समान बताया क्या होगा अपर्याप्त कुंभ के समान? अश्विन भाई, उत्कृष्ट का अंतर जघन्य एक समय, अंतर्मुख जघन्य एक समय, अंतर्मुख कैसे होगा? दो बार बंद होगा औदारिक मिश्रण। फोर्टी सिक्स क्या काल देखा क्या आपने? सभी अपर्याप्तों को लिया था ना, 46 पर लिया था। आयु कर्म का तो उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख दोनों का भी, उत्कृष्ट का भी अनुत्कृष्ट का भी,
दोनों का एक समय करते
अंतर्मुख। अब फिर से आना 50 पेज पर, इसी प्रकार जैसे औदारिक मिश्र में देखा हो इसी प्रकार वैक्रिक मिश्र का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीव को जानना चाहिए। इतनी विशेषता है आहारक मिश्र का योगी जीवों में आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। यहाँ अभी हमने जो कुछ विशेषता देखी थी ना, स्वामित्व में भी कुछ विशेष बात थी। कितना पे 11 निकाला था क्या हमने?
बारह
पर साकार जागृत पेज नंबर 12 पर है, पहले पैराग्राफ के नीचे की चौथी लाइन, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभव बंध का स्वामी कौन है? तो कहते साकार जागृत तत्प्रायोग विशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभव बंध में अवस्थित अन्यतर उक्त जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभव बंध का स्वामी है। इतनी विशेषता है आहारक मिश्र का योग में जो जीव शरीर पर्याप्ति को ग्रहण करेगा वह आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, इसलिए उसका अंतर नहीं है। देखो क्या कहना चाहते हैं, आहार मिश्र वाले ने जो आयु वहां बंध चल रहा है वो तो आहार का योग में भी चालू रहेगी, परंतु औदारिक मिश्र में जब आयु का बंध करेगा वहां तो ये कंडीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि आयु बंध तो लभ्य पर्याप्त ही करते हैं और उसका अंतिम समय तो नहीं ले सकते हम, वो तो मरण का समय होगा, तो उसका आयु का बंध पूर्ण होकर संक्षेपाधाय इतना काल तो बाकी रहेगा ना, बीच में कुछ तो काल रहेगा या अंतर्मुख वाला काल रहेगा बाकी, इसलिए नेक्स्ट समय में पर्याप्ति पूरी करेगा ये कथन वहां घटित नहीं होता, यहां पर होगा। वैकृत मिश्र में तो आयु का बंध नहीं है इसलिए वहां पर भी वो कथन घटित होने का सवाल नहीं। आहारक मिश्र चूंकि जाके आहारक का योगी होने वाला है तो यहाँ उसकी विशुद्धि ज्यादा है तो उसका उत्कृष्ट बंध होगा। इसलिए उसका अंतर नहीं है कहते। अब वैकृत कायोगी जीवन में आठ कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, आठवीं कर्म लिए और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि योग पलटते है उसके पहले फिर वापस लौट के उत्कृष्ट का बंध करेगा, तब अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर दो समय है, यानी जब वो उत्कृष्ट का बंद कर रहा है तब अनुत्कृष्ट का अंतर होगा। इसी प्रकार आहार का योगी जीवों के जानना चाहिए, वो भी अंतर्मूर्त वाली मार्गणा है। कार्मण का योगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, वो भी हमने देखा था। कार्मण योग में जो अंतिम समय होता है तब उसका उत्कृष्ट होता है। इसी प्रकार अनाहारक जीवों के जानना चाहिए, इसी का विशेषार्थ। औदारिक मिश्र का योग में सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध इसलिए किया है, इसमें औदारिक मिश्र कायोग के अंतिम समय में चार घाती कर्मों का संक्लिष्ट मिथ्या दृष्टि के और वेदिनी नाम गोत्र का सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि के उक्त अनुभाग का बंध होता है। अधिक संक्लिष्ट व अधिक विशुद्ध उसी एक समय में होती है लास्ट में। इसी प्रकार कार्मण कायोग में भी उक्त कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल न होने का कारण है, शेष कथन सुगम है, यानी वो कार्मण कायोग के अंतिम समय में होता है उसका उत्कृष्ट। अब वेद मार्गणा यहाँ से आरंभ होती है। स्त्री वेदी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर काय स्थिति प्रमाण है। लक्ष्मी आपको याद है काय स्थिति कितनी है? हाँ, सौ पल्ले पृथक, यानी उसने एक बार संगी पंचम जो है मिथ्या दृष्टि और एक बार उसने उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया, चार घाती कर्मों के बारे में, और फिर लगातार स्त्री वेद में रहा सौ पल्ल्य पृथक, अंतिम भव में फिर दोबारा उत्कृष्ट का बंध किया। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर दो समय है। वेदिनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। देखो अभी हमको ये देखना है, प्रेरणा भी नाम बताएंगे, इसका उत्कृष्ट अनुभाग बंध कब होगा? वेदिनी नाम और गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध जगन्य नहीं, उत्कृष्ट जगन्य के लिए हमने मध्यम परिणाम लिए थे, शपथ के, पर अभी स्त्री वेदी है, यानी स्त्री वेद के उदय का अंतिम समय था चढ़ने वाले नहीं, शपथ के लेना, शपथ तो चढ़ने वाला होता है। हाँ, यानी उपशम श्रेणी में भी नहीं लेना, शपथ में लेना, तो अंतिम समय में उत्कृष्ट है, इसलिए उत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा, दोबारा उत्कृष्ट होने का सवाल नहीं है। उस जब तक उत्कृष्ट नहीं हुआ था तो अभी तक क्या होता? अनुत्कृष्ट, तो उसका भी अंतर होने का सवाल नहीं है। आप कहेंगे ऊपर तो होता है ना, ग्यारहवें गुण स्थान में बंध ही रुक जाता है, परंतु वहां स्त्री वेद नहीं हुआ, अपगत वेदी, अपगत वेदी में तो अंतर घटित होगा परंतु स्त्री वेद में नहीं होगा। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर काय स्थिति प्रमाण है। इसका अर्थ समझते हैं? किसी स्त्री वेदी मुनिराज ने उत्कृष्ट आयु बांधी, उत्कृष्ट अनुभाग सहित वो देवायु बांधी अप्रमत्त ने, बाद में घाता इष्क होकर स्त्री वेद में उत्पन्न होना पड़ेगा। हाँ, परंतु मिथ्या तो में चले गए फिर, तभी तो वेद बांधा था, परंतु फिर मरण के समय फिर उसके स्त्री में उत्पन्न हो सकता है ना, मिथ्या दृष्टि होने के बाद उसने फिर दोबारा वो तो, परंतु केवल आयु ही निश्चित होती है, वेद उस समय जो बंध है उसकी कुछ बात नहीं है, आयु बंधी तो अभी वो गति निश्चित हुई है बस, मिथ्यात्व में आने पर उसने अन्य भी गतियां बांधी है, और वहां स्त्री वेद में उत्पन्न होना है तो मरण के समय वो वही बांधकर वहां उत्पन्न भी होगा। तभी तो ये बात ये घटित हो सकता है, क्योंकि उत्कृष्ट अंतर काय स्थिति यानी कुछ कम काय स्थिति हो जाएगी ना। पहले भव में उसने वायु बांधी उत्कृष्ट 33 सागर वाले, फिर घातायुष को हुआ, मिथ्या दृष्टि हुआ, और फिर लगातार श्री पर्याय में रहा। श्री पर्याय ने कौन सी भाववेद की अपेक्षा है। अंतिम भव में फिर मुनि अवस्था धारण करके फिर उसने 33 सागर की आयु बांधी। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 55 पल्ल्य है। अश्विन भाई घटित करो। साधिक 55 पल्ल्य आपको घटित करना है। तीन पल्ले वाली तीन पल्ले के अंत में तो 6 महीने हो गए। 1/3 पूर्वकोटि पहले वायु बांधी, वो अंतर घटित करना है ना। 1/3 पूर्वकोटि पहले देवायु बांधी, कौन सी देवी, देवी में उत्पन्न हुआ। स्त्री वेद में तो रखना है, देवी में ही उत्पन्न कराना है, क्योंकि 55 पल्ले तो देवी की उत्कृष्ट आयु है। तो उसके 6 महीने के भी लास्ट में अंतर्मुख पहले आयु बांधी, यानी यहाँ पूर्व कोटि की आयु वाले स्त्री वेदी ने 1/3 पूर्व कोटि पहले देवायु बांधी, अनुत्कृष्ट बांधी, क्योंकि देवायु उत्कृष्ट बांधते ऐसे तो नहीं, वो 33 सागर की बनती है तभी उत्कृष्ट बांधती है, अन्य सामान्य से देवायु बांधेगी वो सारी अनुत्कृष्ट होगी। देवायु बांधकर 55 पल्ले वाली देवी होगा, और वह 55 पल्ले के अंतिम अंतर मुहूर्त में फिर उसने आयु बांधी। मनुष्य तीरें से जो कुछ है वो तो अनुत्कृष्ट ही बांध रहे हैं ना। पुरुष वेदी जीवों में सौ सागर, यानी स्त्री वेदी की काय स्थिति है। सौ पल्ल्य पुत्र किसमें, हाँ काय स्थिति जब घटित करना है वहां तो गाता है इसको, और यहाँ तो सौ पल्ल्य पृथक्त, पृथक्त सौ पल्ल्य, यानी 700-800 पल्ल्य इस सर पृथक्त, यानी 900 भी हम ले सकते हैं। नहीं 33 सागर की बांधकर घाता इश्क हुए, कभी अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट देख रहे हैं क्या। उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय तो घटित होता है। उत्कृष्ट अंतर जब काय स्थिति प्रमाण लिया तो उसका अर्थ क्या हुआ कि पहले भाव में उत्कृष्ट आयु बांधी, फिर मिथ्या दृष्टि हुआ, गाता युष्क हुआ, आयु बांधी, नहीं नहीं वहां तो पुरुष वेदी हो जाएगा। होते हैं ना, हमने देखा था ना, कल हमने निकाल के देखा था सिद्धि बंधन के प्रकरण में, 33 सागर की आयु बांधी, घाता इसको होकर 10,000 वर्ष की हो गई, और फिर दोबारा आयु बांधी, ये हमने देखा था उसका, यानी सिद्धि बंधन के प्रकरण में हमने अंतर देखा था निकाल के। यहाँ तो हम 33 सागर इसलिए कह रहे हैं कि उत्कृष्ट अनुभाग बंध उसके साथ हो रहा है, तभी इसीलिए लिया। तैतीस सागर का घाता इश्क हुआ। ये तो हमने स्थिति देखी थी वहां। अब हम आगे पुरुष वेदी की बात देखते हैं। पुरुष वेदी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। उत्कृष्ट अंतर काय स्थिति प्रमाण है। वहां सौपल्य या सौ पृथक सौपल्य लिया या पृथक सौ सागर लेना या सौ सागर पृथक कैसे भी कह सकते। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर दो समय। वेदिनी नाम और गोत्र कर्म का भंग स्त्री वेदी जीवन के समान है क्योंकि वेद के उदय के अंत समय में क्षपक के होगा इसलिए उसका अंतर नहीं है ना उत्कृष्ट का ना अनुत्कृष्ट का। ये समझ में आती है बात। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का भंग ज्ञानावरण के समान है। अभी अभी हमने जो देखा था पुरुष है एक समय और उत्कृष्ट अंतर काय स्थिति प्रमाण। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधक हुआ है साधिक तैतीस सागर है। अब अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद हुआ है तैतीस सागर बांधते समय भी लगातार उत्कृष्ट हो गए ये कोई नियम नहीं है तो हाँ तो अंतर आयु का बंद होकर रुका अंतर पूर्व कोटि तो अनुत्कृष्ट बांधा था उसमें फिर अंतर शुरू हुआ तो ये अंतर पूर्व कोटि और वहां तैतीस सागर के अंत में जाकर उसने जब अनुत्कृष्ट बंद किया। आप कहेंगे तैतीस सागर वाला तो उत्कृष्ट करेगा लगातार उत्कृष्ट तो नहीं होता है। नपुसक वेदी जीवों में चार घाती कर्मों का भंग सामान्य तिर्यंचों के समान है यानी उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। अब नपुसक वेद की काय स्थिति लेना जैसे सामान्य तिर्यंचों में क्या देखा था हमने संगी पंचेंद्रिय नपुसक वेदी जीव ने उत्कृष्ट बंध किया फिर एक इंद्रिय में चला गया तो अनंत काल हो जाए। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का भंग स्त्री वेदी के समान है। नपुसक वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले के उसके उदय का अंत समय क्षपक वाले के तभी उत्कृष्ट होगा इसलिए ना उत्कृष्ट का अंतर है ना अनुत्कृष्ट का अंतर। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। हमने तो स्त्री वेदी को स्त्री में उत्पन्न किया था पचपन पल्ले वाले पुरुष वेदी को वहां तैतीस सागर में उत्पन्न किया था तो नपुसक वेदी तो वहां देह में तो नहीं जाएगा उत्कृष्ट बंध तो कर सकता है तो उसी भव में रहते हुए एक बार वो तैतीस सागर सहित उत्कृष्ट अनुभाग बंध किया और फिर दोबारा किया तो कितना हो सकता है कि वनथर्ड पूर्व कोटि पहले एक बार किया और फिर अंत में किया यानी आठवें अपकर्ष में तो एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग हो गया। ख्याल में यही बात है क्योंकि देव में तो कोई नपुसक वेद नहीं है पुरुष वेद स्त्री वेद तो थे वहां पर उसको तो घटित किया था। अभी अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक तैतीस सागर है। अब तैतीस सागर में कैसे उत्पन्न किया उसको नरक में। उत्कृष्ट का बंध किया बीच में तो देवायु बांध सकता है ना ही कहा रखी बात यानी देवायु भी अनुत्कृष्ट बन सकता है, नरकवि भी अनुत्कृष्ट बन सकता है ना। साधिक कैसे हुआ, तो वंथर पूर्व कोटि पहले उसने नरकायु बांधी है, अनुत्कृष्ट हुई थी। तो यहाँ वंथर पूर्व कोटि, वहां पूरे 33 सागर उसके अंत में जाके आयु बांधी उसने। अपगत वेदी जीवों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। देखो क्योंकि क्यों नहीं कहा, उनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध कब होगा, चार घाती का, चार घाती का पूछ रहे हो, वहां तो वेदिनी नाम गोत्र का होगा।
चार घाती कर्मों का,
हाँ उत्कृष्ट कहाँ होगा। हाँ मैम, अवगत वेदी जब उत्तर रहा है उपशम श्रेणी से, अब नेक्स्ट समय में वो सवेदी होगा, तो उत्कृष्ट करने के बाद दोबारा अवगत वेद के रहते हुए उत्कृष्ट नहीं होगा। हाँ मैम, उनके लिए उत्कृष्ट कम है, श्रेणी उतर कर नीचे आया है और अपगत वेद का अंतिम समय है, तो चार घाती का उत्कृष्ट है। और वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट कहाँ है, शपक के है, उसके भी उत्कृष्ट हो, उसके बाद फिर दोबारा उत्कृष्ट नहीं हुआ, इसलिए सातों का अंतर नहीं है। अब उत्कृष्ट का अंतर नहीं, उत्कृष्ट अंतिम समय, तो अनुत्कृष्ट का अंतर होगा कि नहीं होगा, होगा होगा, कब होगा, ग्यारहवें गुणस्थान में। तो ग्यारहवें में एक समय का अंतर हो सकता है कि नहीं, मरण की अपेक्षा अनुत्कृष्ट था एक समय के लिए, हाँ अंत एक समय होगा कि नहीं होगा, एक समय का अंतर होगा, हाँ एक समय का अंतर होगा कि नहीं होगा, ये मैं कहती हूँ। हाँ मरण होगा तो एक समय का अंतर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सवेदी हो जाएगा, मरण नहीं है, ऐसा नहीं है, मरण है वो, उसके मार्गणा पलट जाएगी। अवगत को कायम रखते हुए पूरा ग्यारहवा गुणस्थान पार करके नीचे आएगा, तब फिर दोबारा बंध शुरू हुआ, तो एक अंतर मूर्त तो उसका अंतर होगा अनुत्कृष्ट का। मार्गणा चेंज हो जाएगी उसकी, इसलिए एक समय में मरण तो होता है, वो अवगत वेदी नहीं रहेगा, देव में जाकर सवेदी हो जाएगा, पुरुष वेदी हो जाएगा। अब अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जगन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुख, इसलिए जगन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मुख का। कि एक समय में मरेगा तो सवेदी हो जाएगा। इसलिए उसको एक समय नहीं लेंगे, पूरा अंतर्मुख लेंगे। अब विशेषार्थ, स्त्री वेद में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया। इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल यद्यपि उपशम श्रेणी में संभव है, पर इनकी बंध विच्छित्ति के पहले ही स्त्री वेद का उदय नहीं रहता। बंध विच्छित्ति के पहले उदय विच्छित्ति होती है, इसलिए इसमें इन तीन कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का भी अंतरकाल नहीं बनता। देवियों की उत्कृष्ट भवस्थ की 55 पल्ले है, इसलिए इसमें आयु कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर साधिक 55 पल्ले कहा है, क्योंकि जो पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य, मनुष्य ने वो तो स्त्रीवेदी ही समझना, हाँ जिसको मनुष्य ने भी कह सकते हैं, प्रथम त्रिभाग में आयु कर्म का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है। प्रथम त्रिभाग ने वंतर पूर्व कोटि बाकी है, तब पुनः 55 पल्ले की आयु वाली देवी होकर वहां 6 महीना काल शेष रहने पर, ये शेष रहने पर नहीं, अंत में अंतर्मूर्त शेष रहने पर चाहिए, क्योंकि 6 महीने पर बंद करने पर उत्कृष्ट अंतर घटित नहीं होगा, आयु का अंत में जाके उसने बंद किया है। हाँ मनुष्य लिए ना उन्होंने। अच्छा तीरियज नहीं हो सकता है क्या, ऐसा आपने पूछा है। 55 पल्ले की हो सकता है ना, देवी में तो उत्पन्न होना है। मनुष्य तीरियंचनी कोई भी हो सकते हैं, फिर भी यहाँ लिखा तो मनुष्य है। वो उनका पहला अवसर है। नहीं, अंत में करें, अंतर्मुख काल शेष रहने पर किया ना, अभी हमने करेक्शन किया उसको। ये विशेषार्थ में लिखा है, कहीं पर मूल में नहीं लिखा। 6 महीने नहीं ऐसा लिखना, वहाँ अंतर्मुहूर्त काल शेष रहने पर 6 महीना निकाल के अंतर्मुहूर्त रख दो बस। इस उसके आयु कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर साधिक 55 पल्ले उपलब्ध होता है। हो गया क्या, कुछ लिखना है? नपुसक वेदी जीव आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध करके पुनः नपुसक वेदी नहीं होते, क्योंकि उत्कृष्ट बंध तो तेती सागर वाला है, वो कितना भी करे घातायुष का फिर भी नपुसक वेद में तो नहीं जाएगा। इसलिए इनमें आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण कहा, यानी पहले त्रिभाग में पहले आयु बंध किया, फिर 8वें अपकर्ष में फिर दोबारा किया। अपगत वेदी जीवों में 4 घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध उपशम श्रेणी गिरने वाले जीव के अपगत वेद के अंतिम समय में होता है, और वेदिनी नाम व गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में, यानी वो क्षपक का अंतिम समय लेना होता है। इसलिए इनमें उक्त 7 कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया। शेष कथन सुगम। ये वेद मार्गणा हुई, अब कषाय मार्गणा। क्रोधादि 4 कषाय वाले जीवों में 4 घाती कर्म और आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। यह अंतर्मूर्ति क्यों लिया? कषाय पलटता है, यानी वो पलटने के पहले पहले दोबारा उत्कृष्ट कर देवे इतना। और आयु कर्म का भी एक बार जो आयु का बंध चल रहा है उसी में घटित होगा, यानी 2 अपकर्ष घटित नहीं हो गए। कषाय या योग के एक अंतर्मूर्त काल में 2 बार अपकर्ष घटित नहीं होते। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर 2 समय, वो जैसे हमेशा हम देखते हैं। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि क्रोध के उदय के अंतिम समय में शपक के इसका उत्कृष्ट होगा, तो अनुत्कृष्ट का अंतर भी नहीं होगा, उत्कृष्ट का भी अंतर नहीं होगा। इतनी विशेषता है लोक कषाय वाले जीवों में मौनी के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, लोभ कषाय वाले कहने से 10वें के अंत तक लेना, तो लोभ कषाय होते हुए मुनि का अनुत्कृष्ट का अंतर कैसे होगा? दसवें गुणस्थान में मुनि का तो बंधन नहीं है, जैसे हम अन्यत्र ग्यारहवें गुणस्थान में घटित करते थे ना ज्ञानावरण आदि का, अब ये नौवे में उसने बंद किया, उपशम श्रेणी चढ़ने वाला नौवे के अंत में उसने बंद किया। मुनि इन जनरल ने लोभ का बंद किया क्योंकि हम मूल प्रकृति देख रहे थे। तो फिर दसवें में गया, दसवें में बंद नहीं था एक समय के लिए और मरकर देव हुआ तो एक समय का अंतर पड़ा और फिर लोभ के होते हुए दोबारा बंधे ने अंतर मुहूर्त के बाद मरकर देव हुआ। अंत में ने लोभ के उदय चल रहा था तभी
अंतिम समय में
हमारे कहते वहां पर भी लोभ है ही, फिर लोभ का लोभ रहा वहां पर, देव में भी लोभ कषाय का उदय था, यहाँ पर भी था वहां पर भी था। इसलिए दसवें में लोभ के उदय के रहते हुए मुनि का बंध नहीं था, अन्य तीन का बंध था। दसवें गुणस्थान में मरण, मरण की अपेक्षा लगाना। विशेषार्थ, जो जो उपशम श्रेणी पर आरोहण करता है उसके क्रोध मान और माया कषाय का अभाव होकर लोभ कषाय के सद्भाव में मोहिनी कर्म की बंध विच्छित्ति होती है, ये नवे के अंत में। और ऐसा जीव सूक्ष्म संप्राय में मरकर देव पर्याय में यदि उत्पन्न होता है तो वहां भी लोभ कषाय का सद्भाव बना रहता है, इसलिए लोभ कषाय में मोहिनी के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल बन जाता है। अब यदि यह जीव दसवें गुणस्थान में एक समय तक रहकर मरता है तो एक समय अंतरकाल उपलब्ध होता है, और यदि अंतर्मूर्त रहकर मरता है तो अंतर्मूर्त अंतरकाल उपलब्ध होता है। यही कारण है लोभ कषाय में मोहिनी के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त का, क्योंकि यहाँ भी लोभ कषाय था वहां पर भी लोभ कषाय चालू रहा उसका। अब ज्ञान मार्ग, मत्य ज्ञानी यानी मत्य अज्ञानी और श्रुता ज्ञानी ने श्रुता अज्ञानी जीवों में गुणस्थान एक और दो, चार घाती कर्मों का भंग सामान्य तिरंचों के समान है। अभी उसका मिथ्यात्व में ही रखना है ना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि उसका उत्कृष्ट बंध करेगा, उत्कृष्ट बंध करके एक समय के बाद वापिस किया तो एक समय का अंतर और लगातार एक इंद्रिय में रहा तो अनंत काल। अनुत्कृष्ट का अंतर कितना होगा जघन्य और उत्कृष्ट, एक समय से दो समय। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का भंग घाती कर्मों के समान है। मति अज्ञानी जीवों में आयु कर्म का उत्कृष्ट क्या क्या क्या
क्या
इकतीस सागर का देव का होगा ना, द्रव्य संयमी के क्या नहीं, तो एक समय के अंतर से कर सकता है
एक समय को, तो अंतर
अनंत काल होगा। मिथ्या दृष्टि है ना, एक बार ग्रहविक में जाके आया है और अनंत काल, फिर दोबारा वहां से ग्रहविक में से मनुष्य में आया, भले पंचेंद्रिय होगा परंतु बाद में मिथ्या तो में तो कुछ भी परे धारण करके एक इंद्रिय में पहुंच गया। ग्रहवेग से डायरेक्ट एक इंद्रिय में नहीं भेजना उनको, कितना है, हाँ हाँ तिरंज मनुष्य पर इकतीस सागर वाला स्वामित्व मत्य ज्ञानी में चार घाती कर्मों का नहीं, आयु का किधर है, संगी पंचेंद्रिय संगी साकार जागृत संकलेश उत्कृष्ट अनुभव अवस्थित आयुक्रम के उत्कृष्ट अनुभव बंद का नरकायु को लिया है। उत्कृष्ट अनुभाग देव का किसके लिए होगा? वो तैतीस सागर वाली देवायु बांधेगा तो उत्कृष्ट होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, देवायु का उत्कृष्ट कब कहलाएगा? तैतीस सागर। उससे नरकायु का उत्कृष्ट हो सकता है कि नहीं, इकतीस सागर से कि नहीं हो सकता, पता नहीं। उसका तो अल्पभूत तो अलग अलग होते हैं उसके, लेकिन नरकायु के अपने कुछ अनुभव है कि नहीं है?
क्योंकि
यहाँ पे दर्द और अगर
मनुष्य
दोनों बताए तो इसीलिए कह रहे हैं। ये देखना मध्य ज्ञानी में उत्तर प्रकृति देख लो स्वामी को, हम भी सोचेंगे ना, देखेंगे स्वामी तो उत्कृष्ट की। दो सौ बारह के भी पहले कहाँ कौन सी मार्गणा देखनी हमको? हाँ अज्ञानी की। मत्ते ज्ञानी 201 वहां से शुरू है। आयु की कहाँ बात आती देखेंगे। तीन आयुओं का भंग ओह के समान है। अब देवायु के उत्कृष्ट अनुभाग बंदे का स्वामी कौन है? अन्यतर मनुष्य को लिया। मैं 202 पेज पर देख रही हूँ, देवायु के लिए मनुष्य को लिया, यानी वो इकतीस सागर वाला लेना है। परंतु बाकी ओह में क्या लिखा है उसको देखेंगे हम। स्वामित्व में जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणा होगा। जघन्य में अगर कंपेयरिंग करे तो अनंत गुणा होगा, पर इट डिपेंड्स। केवल वो उसका अनुभाग वो देखने, उसके अनुभाग के अविभाग प्रतिच्छेद देखने। आयु की बात कहाँ है? ये पेज नंबर 188 वहां हम देख रहे हैं। जरा नरकायु की बात है, नीचे से 3, 3, 6, 3, 9 एक दसवें लाइन में मुझे मिली। नरकायु तीन जाति सूक्ष्म पर्याप्त साधारण के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ संघर्ष परिणाम वाला उत्कृष्ट अनुभाग बंध करने वाला अन्यतर मनुष्य या संगी पंचेंद्रिय तीर्यंच। ये तो केवल स्वामित्व है, उसका अल्प बहुत्व हमको देखना पड़ेगा। अनुभागों का अल्प बहुत्व आगे के भाग में होगा। मूल प्रकृतियों में नहीं क्या अनुभाग का अल्प बहुत्व होना चाहिए? परंतु मूल प्रकृति में कैसे, आयु में क्या मूल प्रकृति में नहीं आएगा, उत्तर प्रकृति में ही नहीं आएगा। अल्पबोध तो परस्थानों में होगा, स्वस्थान में तो भेद ही नहीं है ना उसके। अल्पबोध में भी अन्य अन्य प्रकृतियों के साथ कंपेयर करेंगे। अल्पबोध 175 पेज पर कहीं लिखा है उन्होंने, परंतु वो परस्थान में घटित होगा। इसमें नहीं आएगा। हाँ आगे के पुस्तक में होगा, पांचवें पुस्तक में मिलेगा शायद। हमने एक बार वो अल्पबोध देखा। हाँ नरकायु, क्योंकि मनुष्य तीरंग दोनों को लिया है, नरकायु हुआ। यहाँ आयु इन जनरल ही लेना है। अभी हम जो 52 पेज पर देख रहे थे वो अभी आयु कर्म में दोनों को लिया है, नहीं देवायु तो नहीं ले सकते। देवायु का स्वामीपना मनुष्यों के लिए, तो यहाँ मनुष्य आयु को भी ले सकते हैं ना, अगर वो शुभ आयु ले। मनुष्य आयु भी 3 इंच मनुष्य दोनों बांधेंगे, मिथ्या दृष्टि बांधेंगे यदि वो प्रशस्त में लेना है तो। अब चलो आगे बढ़ते, कुछ तो बाकी रखेंगे ना जानने के लिए। वो वहाँ लिखा था नरकायु के लिए। तेरा क्लेश नंबर 13 मत्स्य ज्ञानी में आयु कर्म के लिए। हाँ संक्लेश वहाँ हमने लिख के रखा है नरकायु करके, क्योंकि तत्प्राय संक्लेश लिखे हैं, और संक्लेश में अधिक अनुभाग बंधेगा तो कौन सी आयु का बंधेगा, तो एक नरकायु रहेगी ना। हाँ लिखा है हमने वहाँ पर। पेज 13 पर लिखा है नर संकलेश परिणाम में अनुभाग किसका अधिक बंधेगा, नर्क। घाती कर्मों के समान ये है। देखो फिर से मैं पढ़ती हूँ, अभी आना 52 पेज पर। ये जो 132 पैराग्राफ का नीचे से तीसरी लाइन, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, ये तो हमने हमेशा घटित होता है,
और उत्कृष्ट अंतर
अंतर्मूर्त है। अरे मैं सॉरी सॉरी सर, मैं आगे मैंने जंप किया आगे, सॉरी सॉरी सॉरी। एक एक मिनट, सेकंड लाइन में देखना, तभी मैंने गड़बड़ी की कुछ। मत्स्य ज्ञानी में आयु कर्म सेकंड लाइन में है। उत्कृष्ट अनुभाग का बंध का भंग घाती कर्मों के समान है। घाती कर्मों में अभी हमने क्या देखा, सामान्य 3 इंच के समान है, उसमें उत्कृष्ट का बंध एक समय के अंतर से होगा, और अधिक लंबा अनंत काल। क्यों अनंत काल होगा, वो मति ज्ञानी का मति अज्ञानी ही रहा, तो उसने 33 आगर की आयु बांधी, नरक में गया, वहां पर भी वो तो कालांतर से 3 इंच हुआ, फिर मनुष्य हुआ, एक इंद्रिय में चला गया, अनंत काल के बाद फिर 33 आगर की आयु बांधी उसे। तो घाती कर्मों के समान बताए। यहाँ देवायु वाली तो ले नहीं सकती, क्योंकि वो तो संयमियों को बनती है ना, इसलिए नरकायु लेना है। और घाती कर्मों के समान का है, क्या है, अनंत काल। समझ में आई बात, ये अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंध का भंग होगा के समान है, इन्हें एक समय का अंतर होगा। साधिक 33 साल नरकायु ही अनुत्कृष्ट बांधी, एक बार आयु बांधी वंथन पूर्व कोटि, और वहां जाके 33 सागर के अंत में। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। ये कब होगा, उत्कृष्ट कब होगा उसका अनुभाग बंध। हाँ लक्ष्मी जी, हाँ नहीं नहीं सुनो, उनका सोचने कब होगा,
संयम के समय।
संयम के समय लोगों को सोचने का टाइम दे दो, टाइम दे दो जरा। सबको मालूम है, परंतु कभी कभी थोड़ा सा हम कंफ्यूजन होते हैं, हम हाँ घाती कर्मों की बात सोचते, कभी इसकी बात सोचते। इसी प्रकार असंयत और मिथ्यादृष्टि जीवन में जाना चाहिए, यानी जो मत्य ज्ञानी का भंग है, ऐसा ही कथन संयम मार्गणा के असंयम में घटित होगा और सम्यक मार्गणा के मिथ्यादृष्टि के घटित होगा। विभंग अभी ज्ञान मार्गणा की वापिस आते बात, विभंग ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्मों का भंग सामान्य नारकियों के समान है, क्योंकि विभंग ज्ञान अगर कंटिन्यूअस रखना है तो उसने उत्कृष्ट बंद किया, अंतर कितना होगा, एक समय के अंतर से फिर दोबारा उत्कृष्ट कर सकता है, या घाती कर्मों का उत्कृष्ट किया और कुछ कम तैतीस सागर के बाद फिर दोबारा किया, क्योंकि उसका विभंग ज्ञान कायम रखे ये कहां हो सकता है, तो सातवें नरक में तैतीस सागर वाला कुछ कम का अंतर होता है। अब कहते हैं चार घाती कर्मों का हो गया, अनुत्कृष्ट का अंतर कितना होगा, एक समय के अंतर, एक समय के लिए उत्कृष्ट किया या अधिक से अधिक,
दो समय।
वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर काल नहीं है, ऐसा क्यों लिखा, बोलो।
मनुष्य
संयम के सन्मुख होता है तब उत्कृष्ट है, और तब उसका उत्कृष्ट होने के बाद वो तो समय दृष्टि हो जाता है। अब आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुक्त है, एक अपकर्ष में लेना है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम छह महीना, ये कैसे होगा, नारकी विभंग ज्ञान चालू है, पहली बार उसने आयु का बंध किया अनुत्कृष्ट और अंत में फिर एक बार किया, विभंग ज्ञानी कहीं पर भी ले लो, अनुत्कृष्ट ही करना है ना। परंतु आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद, मैं उत्कृष्ट की बात पूछ रही हूँ, मनुष्य तीन इंच के होंगे, इसलिए वहाँ एक ही बार आयु का बंद होता है उसमें लेना, क्योंकि उसका विभंग ज्ञान ज्यादा नहीं रहेगा, हम ये दो बार अपकर्ष भी नहीं आएगा उसके,
विभंग
मत्य ज्ञानी नहीं, मत्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान में कौन सा विभंग ज्ञान, नहीं नहीं लब्धि रूप ही नहीं है वैसे तो, उपयोग रूप ना, क्योंकि भी उपयोग अपन उपयोग रूप हर समय नहीं रहता ना, नहीं नहीं रहता, हमने देखा था ना अंतर मुहूर्त तक ही रहता है,
मैंने पहले भी पूछा था लब्धि रूप है तो
नहीं, नहीं लब्धि रूप नहीं है, लब्धि रूप कैसे है, लब्धि रूप होगा तो हम ज्ञान है कहेंगे उसको, जैसे मनपरि ज्ञानी ने कभी उपयोग में नहीं लिया फिर भी हम उसको मनपरि ज्ञानी कहते हैं,
उसका लब्धि रूप
क्या लब्धि रूप है, हाँ वो रहता है एक बार प्रकट हुआ तो जब तक वो उसका नष्ट नहीं हुआ है तब तक उसको मनपरि ज्ञानी कहेंगे, विभंग ज्ञान विशिष्ट उसके उपयोग लगाने पर या जो कुछ उसके जो नियमित रूप से बनती है बातें तो अंतर्मूर्त के लिए उसका विभंग ज्ञान होगा, इन्हें वो पुनः पुनः हो सकता है, जो हम बाह्य में भी देखते हैं किसी को हम कहते हैं उसको
ज्ञान में
होता है तो कभी कभी उसका उपयोग लगेगा और सब बातों में नहीं लगेगा एक बार, और उसका हर समय नहीं रहता। विशेषा मत्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान में संयम के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, इसलिए इनमें इन कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद के अंतर काल का निषेध किया है। विभंग ज्ञान में आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद तिर्यंच और मनुष्य के होता है। हमने देखा था नरक आयु ही लेना था इसमें, इसलिए इसमें आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है, शेष कथन सुगम है, क्योंकि उनका विभंग ज्ञान कंटिन्यूस नहीं रहता। इसमें आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि इनमें चार घाती का उत्कृष्ट कब होगा? मिथ्या तो के संदर्भ में, तो उसके बाद फिर दोबारा उत्कृष्ट नहीं, अभिनिबोधिक के रहते हुए नहीं होगा। और फिर वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट कब है? शपक में। अब अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, लक्ष्मी जी कहाँ होगा? नहीं नहीं, सात कर्म होगा, कैसे आप आयु की बात क्यों सोच रहे हैं? हमारा प्रश्न ऐसा है, अनुत्कृष्ट बंद हो रहा है किसको? समय दृष्टि है, घाती का सोचो, अघाती का सोचो, दोनों का सोचो, सातों का सोचो, आप जघन्य की बात सोच रहे, अनुत्कृष्ट की सोच रहे, उत्कृष्ट जो नहीं वो सारा अनुत्कृष्ट, उत्कृष्ट क्षपक के दसवें में होता है वेदिनी नाम गोत्र का, तब तक का सारा अनुत्कृष्ट है, तो अनुत्कृष्ट में अंतर कैसे घटित होगा? जब तक क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ा तभी तो अनुत्कृष्ट ही होता रहा, फिर भी यहाँ अंतर कह दिया, ये तो मूल प्रकृति कैसे होगा? बीच में अंतिम समय में उत्कृष्ट होता है, दसवें के अंत में उत्कृष्ट हुआ, तो अनुत्कृष्ट बंधन नहीं होगा, ऐसा कब होगा? उपशम श्रेणी तो मोहने के लिए दसवें में लेना एक समय, तीन घाती के लिए ग्यारहवें में एक समय लेना, वैसे हम चार घाती के लिए कॉमनली हम ग्यारहवा कह देते हैं, यानी अनुत्कृष्ट बंद हो रहा था उपशम श्रेणी में, बंद रुक गया, एक समय में मरा तो देव में फिर बंद शुरू हुआ, वो अनुत्कृष्ट ही रहा, घाती में भी ऐसा होगा और अघाती में भी ऐसा, इन्हें एक समय में मरा तो एक समय का अंतर, अंतर्मूर्त के बाद मरा तो
अंतर्मूर्त,
हाँ यानी ग्यारहवें में फिर से दसवें में, पूरा श्रेणी नहीं दसवें में लाना,
कभी बंद शुरू होता है,
मुझे यही खाली मालूम
है। उपशम श्रेणी में उसका अनुत्कृष्ट बंद रुक जाएगा, इतनी बात है।
आपने जो पहले दो पॉइंट बताए, एक समय में मर जाए पूरा जाए या उत्तर मुहूर्त के बाद जाए तो वो घटित होगा,
बस एक समय तभी तो घटित होगा, अदरवाइज एक समय घटित होता ही नहीं है,
वो बराबर ध्यान में।
और उसमें भी हम चार घाती एक साथ कह देते हैं, परंतु मोहनी का अकेला लेना है, मोहनी का बंदर रुक गया नवे के अंत में, तो दसवें में जाकर एक समय में मरा तो मुनि का एक समय में वहां शुरू हुआ देव में। कैसे समान एक समय का
नहीं
नहीं तो उसमें तो नवे में उसने बंदर हो गया
उसके लिए इधर पेटी उतार और नहीं तो पेटी उतर के अंतिम समय में दस पेट के उतर के समय अंतिम समय मर गया तो दोनों समान होते हैं।
मरना क्यों उसको और नीचे लाओ ना
नीचे दोनों तरीके से होगा वही
ये तो हो गया हमने सात कर्मों की बात देखी अभी निबोधिक ज्ञानी में सात कर्मों की बात। अब आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। अब ये आप जो पूछते बता रहे हैं अप्रमत्त वाला करता है ये तो समय दृष्टि है अप्रमत्त गुणस्थान वाला उत्कृष्ट आयु बंध करेगा और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम छासर सागर है। मार्गना का है परंतु उसने उत्कृष्ट बंद किया था आयु का
तो पीछे घाता है उसको
फिर भी कुछ घाता है या हाँ या 33 सागर माइनस एक समय करके फिर 66 सागर नहीं घूमेगा ना
नहीं 33 सागर में उत्कृष्ट
अनुभाग उत्कृष्ट 33 सागर का बांधा फिर घाता युष्क होकर समय दृष्टि रहा परंतु घाता युष्क रहकर नीचे के नीचे के देव में आया वो वहां से फिर उसने आयु बांधकर समय दृष्टि वो घूमता रहा छासर सागर तक अंतिम फिर 33 सागर का करना है उसको हाँ तभी तो उसका उत्कृष्ट अनुभव बनेगा। उनको कहते हो आयु बांधी उतना वो करना ही पड़ेगा कोई बात नहीं है तो कुछ कम 66 सागर ले लिया अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उसको क्षायिक बना के फिर भी वो पूरा 66 सागर नहीं हो पाता ना पहले अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर ओग के समान है मिथ्या तो में क्यों चला जाएगा वो हमारी मार्गना बदल जाएगी
नहीं नहीं आयु
हो सकता है हमने देखा ना श्रीवेदी में अरे अभी ये नहीं कहा अभी कंफर्म नहीं है
अरे बाकी सब बदल जाता
है आपका जो बैठती नहीं ना फिर बाहर कहीं ना कहीं वो बाहर आते फिर कृष्ण घाता युष्क उसके देवायु का घात हुआ है आयु कर्म में बस उसकी स्थिति देखनी है कितनी है वो देवी के देवकी की वो बात फिर डिसाइड होती है ना घाता युष्क होने पर वो भवनवासी में भी उत्पन्न हो सकता है देवी में भी उत्पन्न हो सकता है अब आयु के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर ओह के समान है अनुत्कृष्ट का कितना होगा साधिक 33 सागर वो अंतर पूर्व कोटि पहले उसने अनुत्कृष्ट का बंध किया 33 सागर का ही किया परंतु 33 सागर का लगातार उत्कृष्ट अनुभाग नहीं बनता है बीच बीच में अनुत्कृष्ट भी बंधेगा तो एक बार आयु बांधी अनुत्कृष्ट बांधी उसमें और फिर वंथर पूर्व कोटि यहां बिताया 33 सागर देव में गया और वहां आयु के अंत में उसने आयु बांधी उसमें अनुत्कृष्ट भी बांधी इसी प्रकार अवधि दर्शनी और सम्य दृष्टि जीवों के जानना चाहिए मन परे ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि यही ऐसे ज्ञानी में लिया, वैसे दर्शन में लिया। ये समय दृष्टि की बात है, अवधि दर्शन उसका नहीं। हाँ, तो अवधि दर्शन में क्या अंतर होगा खास? देखा ना, साधिक तैतीस सागर, साधिक तैतीस सागर होने में क्या अंतर है? अवधि ज्ञान है वो तो कायम रहता है, विभंग ज्ञान के लिए जो है अवधि ज्ञान तो उसका थ्रोट रहता है। समय दृष्टि का अवधि ज्ञान नष्ट नहीं होता, वो बात नहीं, परंतु वो तो विभंग ज्ञान कैसे नियम से अंतर्मुक्त के लिए, वैसे अवधि ज्ञान कंटिन्यूस रहा उसका। मन परे ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का अंतरकाल नहीं है। चार घाती का क्यों अंतर नहीं है? वो कब होता है उत्कृष्ट? हाँ लक्ष्मी याद है, असंयम के साथ तो उसका अंतर नहीं, और वेदिनी नाम गोत्र का तो क्षपक है उसका भी अंतर नहीं। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अब ये कहाँ पर होगा? अभी अभी देखा था ना हमने उपशमशय, अभी पूरा है, पूरा ही उसका अंतर घटित करना है, तेने फिर दोबारा उसको मन परे ज्ञानी रखना है। एक समय में मरकर देव में गए तो मन परे ज्ञान नहीं रहे, इसलिए पूरा अंतर्मूर्त रहेगा। आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। एक ही भव में दो बार आयु बांधनी तब लेना है, क्योंकि देह में चला जाएगा तो मन परिज्ञान नहीं रहेगा। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत और चेतोपस्थापना संयत जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, सामायिक और चेतोपस्थापना संयत जीवों के सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। इसी प्रकार उत्कृष्ट का तो नहीं ही है, अनुत्कृष्ट का भी नहीं है, क्योंकि अनुत्कृष्ट का अंतर दसवें ग्यारहवें जहां जो होता है इसके तो नवे गुण स्थान तक ही है ये मार्गणा, इसलिए अनुत्कृष्ट का तो बंध होता ही रहेगा। विशेषा अभिनिर्बोधि आदि तीन ज्ञानों में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध मिथ्यात्व के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में होता है, और वेदिनी नाम व गोत्र कर उत्कृष्ट अनुभाग बंधक शपक श्रेणी में होता है, इसलिए इनमें उक्त सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंधक के अंतरकाल का निषेध किया है। इनमें उक्त सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंधक का अंतरकाल उपशम श्रेणी की अपेक्षा बन जाता है, जो जगत में एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त उपलब्ध होता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। यद्यपि अभिनिबोधिक आदि तीन ज्ञानों का उत्कृष्ट काल चार पूर्व कोटि अधिक 66 सागर है, पर यहाँ आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागर ही बनता है। क्योंकि यहाँ पर वेदक संयुक्त की मुख्यता से ही यह अंतरकाल उपलब्ध हो, पता है नहीं? मन परे ज्ञान में असंयम के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, और वेदिनी नाम व गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद शपक श्रेणी में होता है, इसलिए इसमें इन सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद के अंतरकाल का निषेध किया है। तथा इसमें इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर का अंतर्मूर्त कहने का कारण यह है, यह जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर अंतर्मूर्त काल तक इनका बंधक रहता है। यह केवल ग्यारहवें में ही होगा, पूरे उपशम श्रेणी में नहीं। सामायिक और छदोपस्थापना संयम नवे गुणस्थान तक ही होते हैं, इसलिए इनमें आयु के सिवा शेष सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं उपलब्ध होता, इसलिए उसका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है। परिहार विशुद्ध संयत जीवों में ये संयम मार्ग न चालू होता है। चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। इसका उत्कृष्ट कब है? सामायिक के सम्मुख हुए तब, इसलिए उसका अनुत्कृष्ट का भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि बाकी तो कर्म सतत बनते ही रहेंगे, सात कर्म तो हमेशा ही बनेंगे। वेदिनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। अब यह परिहार विशुद्धि छठे सातवें गुणस्थान है, इसका उत्कृष्ट तो हम एक स्वस्थान में जो है ज्यादा विशुद्धि तब होता है, तो उत्कृष्ट का लगातार काल एक समय या दो समय है, इसलिए उत्कृष्ट का अंतर भी एक समय होगा और पहले कुछ कम पूर्व कोटि परिहार विशुद्धि का काल है, 38 वर्ष कम करने है। उसके शुरुआत में एक बार उसने उत्कृष्ट बंद किया और अंत में जाके एक बार किया। उत्कृष्ट हाँ, अभी उसके स्वामित्व की चर्चा नहीं है, फिर भी क्षपणा ही है ना, क्योंकि अगर अंतर नहीं घटित होगा, अगर क्षपणा को ही लिया एकमात्र अंतर घटित नहीं होगा, अंतर घटित हो रहे हैं ना यहाँ पर। वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर दो समय है, जब वो उत्कृष्ट का बंध कर रहा है तब। अथवा इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं, ये अथवा वाली बात है, ये क्षपणा की। और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है। क्षपणा के काल में उसने एक समय के लिए उत्कृष्ट किया, फिर बाद में फिर अनुत्कृष्ट करने लगा। आयु कर्म का भंग मनपरे यानी जीवन के समान है। वंथर पूर्व कोटि का कुछ कम है ना, सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों में छह कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि इसमें छह कर्म ही बनते, सात नहीं लेना, मुनिय नहीं बनता। तीन घाती और तीन अघाती है। तीन घाती का उत्कृष्ट कब है? हाँ लक्ष्मी जी, दसवें में। कब? अंत में, उतरने वाले के। और वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट शपक वाले के अंत में होता है, इसलिए उसका अंतर नहीं होगा। संयता संयत जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। चार घाती का उत्कृष्ट कब होगा? मिथ्या तो के सन्मुख वाले। वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट कब होगा? संयम के सन्मुख वाले। तो जो अंतिम समय में उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट का भी अंतर नहीं होगा और अनुत्कृष्ट का भी नहीं होगा, क्योंकि वो मात्र अनुत्कृष्ट का अंतर कहाँ होता है? तो उपशम श्रेणी में, ग्यारहवीं में या दसवीं में होगा। आयु कर्म का भंग परिहार विशुद्ध संयत जीवन के समान है, क्योंकि ये संहिता संयत मार्गणा एक ही भोग के लिए होगी, नहीं उसका काल पूरा काल कितना है तो कुछ कम पूर्व कोटि, परंतु उसका आयु का बंध अंतर पूर्व कोटि हो सकता है। एक बार हुआ फिर लास्ट में हुआ तो कुछ कम पूर्व कोटि हो जाएगी, अंतर पूर्व कोटि। चक्षु दर्शनी जीवों में अवधि दर्शन की बात तो बता चुके वैसे, और अचक्षु दर्शन तो ओके समान था, इसलिए अभी डायरेक्ट चक्षु दर्शनी को ही लिया। त्रस पर्याप्तकों के समान भंग है, क्योंकि चक्षु दर्शनी कौन कौन जीव होते हैं, कितनी इंद्रिया वाले होते हैं? चतुर इंद्रिया और पंच इंद्रिया, हाँ करीबन उतनी ही हो जाती है, क्योंकि द्विंद्रिय अकेला और तीन्द्रिय, हाँ चक्षु त्रस जितनी होती है, इसलिए त्रस पर्याप्त के लिए लिया। चक्षु उस ऊपर के पूर्व कोटि नहीं लिए, पृथक को पूर्व कोटि नहीं लिए, हाँ परंतु वो अपर्याप्त भी हुआ। परंतु द्विंद्रिय तिंद्रिय नहीं हुआ, हाँ परंतु चक्षु दर्शनी भंग उसका पर्याप्त के समान है, परंतु उसका काल, हाँ तो कितने, हाँ नहीं नहीं उसका काल पहले नक्की करते हैं ना, कितना 2000 साल है, यानी ऊपर के पृथक कोटि पूर्व नहीं लेना है। तो त्रस पर्याप्तकों में हमने क्या देखा था? अभी इनमें जो चार घाती का उत्कृष्ट बंध कौन करेगा? वो मिथ्या दृष्टि। कितने अंतर के करेगा? एक समय के अंतर से करेगा। उत्कृष्ट उसकी काय स्थिति लेना 2000 साल, शुरुआत में एक बार उत्कृष्ट किया, लास्ट में एक बार किया। अब अनुत्कृष्ट का अंतर कितना होगा? एक समय से अंतर में उपशम श्रेणी होगी कि नहीं? चक्षु दर्शनी वेदी नाम गोत्र में भी ऐसे उत्कृष्ट जो है वो अंतिम समय होता है, शपक में उसके उत्कृष्ट अंतर नहीं है, अनुत्कृष्ट का अंतर उपशम श्रेणी में। आयु के लिए वो देवायु देती सागर वाली कैसी ले सकते हैं। अब कृष्ण लेशा वाले जीवन में लेशा मार्गना यहाँ से लेशा और योग जरा अटपटे होते हैं हमेशा। कृष्ण लेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। साधिक में ले लिया क्योंकि दो अंतर्मूर्त पड़ते हैं ना वहां पर, मरण के, हाँ वहां नहीं होगा, नारकी में अंतिम समय होगा, नरक में जाने के एक अंतर्मूर्त पहले और नरक के अंतर्मूर्त यानी उसका अंतिम समय। कृष्ण लेशा वाले में आघाती का भी उसी में रहा था। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर दो समय। वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर। क्यों
उत्कृष्ट अनुभाग कभी कर
देगा समय दृष्टि को बंद देगा सर्व विषय तो समय दृष्टि को बंधेगा तो दो समय तक लगातार बन सकता है उत्कृष्ट परंतु उत्कृष्ट का अंतर एक समय होगा या अधिक से अधिक अंतर कुछ कम 33 सागर क्योंकि वही लेशा कंटिन्यूअस रहनी चाहिए यानी सातवें नरक में जाके उसने सम्यक तो प्राप्त किया वहां एक बार और फिर लास्ट में एक बार और गोत्र के लिए किसको सम्यक के सम्मुख करा रहे हैं वो जगन्य में नील गोत्र का जगन्य होता है ये प्रशस्त वाली प्रकृति अनुत्कृष्ट का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर दो समय आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है ये अंतर्मूर्त ही गया क्योंकि आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध मनुष्य 3 इंच करेंगे नरक संबंधी आयु बांधेंगे क्योंकि कृष्ण लेशा वाला है ना तो एक ही बार आयु का बंध होता है तो उत्कृष्ट का अंतर पड़ेगा बीच में लेशा के काल में उत्कृष्ट में कहां है उत्कृष्ट में नरकायु लेना है कृष्ण रेशा वाला नरकायु का बंध कर रहा है तभी के और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 6 महीना है क्योंकि यहाँ भले मनुष्य ने बांधी उसकी आयु नरकायु फिर भी उसके लेशा पलट कर मरण के समय फिर दोबारा कृष्ण हो जाएगा उन बीच में पलटेगी जरूर इसलिए लेशा नहीं पलटते हुए दो बार आयु का बंध होना चाहिए तो नरक में लेना इसलिए उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 6 महीना बताया इसी प्रकार 6 लेशा वाले जीवों के आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का समान अंतर है अब यही रुकेंगे हम नील कपोत लेशा कल देखेंगे जाने के ज्ञान दे सूझे मोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे।